जीव जब मिथ्यात्व करता है तो वह पाप करता है। मिथ्यात्व स्वयं एक पाप कर्म है, उसके उदय में जीव पाप करता है। अनादिकाल से आठ प्रकार के कर्म जीव को लगे हुए हैं, इनके उदय में जीव संसारी कहलाता है। जीव को संसार में रहना भी एक दोष है, एक अपराध है। एक परतंत्रता है। आठों कर्मों को बांधने के लिए मूल कारण मोहनी कर्म है। उस मोहनी कर्म के उदय के कारण जीव अज्ञानी बनता है, यानी अपने ज्ञान स्वभाव को वह भूल जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। उस निशे में वह ज्ञान स्वभावी होकर के भी शक्ति की अपेक्षा से, योग्यता की अपेक्षा से, पात्रता की अपेक्षा से वह ज्ञान स्वभावी है, किंतु वह इसी कर्म के उदय के कारण उसका जैसा प्रभाव रहता है उस प्रभाव को वैसा ही वह ग्रहण करके वैसा ही चलने लगता है। इसी को मोहनी कर्म का प्रभाव कहते हैं। एक नशा है, नशा मोहनी कर्म सभी के लिए अनर्थकारी है, जैसे शराब होता है, मद्य। शराब शराब ही है, पेट में जाएगा तो चुपचाप बैठ नहीं सकता, वो जलन भी पैदा करेगा, शरीर को भी खोखला बनाएगा, निशे में रखेगा, होश में नहीं रहेगा, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता उसको। ये किसका प्रभाव? शराब का प्रभाव। पेट में जाने के बाद शराब का प्रभाव जिस प्रकार रहता है, उस प्रकार ही मोहनी कर्म अगर पेट में गया है, हमने बांधा है, हमने स्वीकार किया है, हमने पी लिया है, तो उसका भी एक नशा अवश्य चढ़ेगा। जब वह नशा चढ़ जाता है तो वह नशा भी दो तरह का बताया। एक नशा वह है कि असत्य में श्रद्धा कराता है, जो आत्मा के लिए दुखकारी है, हानिकारक है, उसमें ही ज्यादा इंटरेस्ट लेना, ये भी एक नशा है कि नहीं? ये भी एक नशा है। इस नशे में वह दो तरह से काम करता है, श्रद्धा नहीं करने का कारण, सत्य पर श्रद्धा नहीं होता उसका भी कारण है, और असत्य के प्रति श्रद्धा रख करके उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो चलने के लिए भी एक नशा चाहिए। श्रद्धा करने के लिए एक नशा चाहिए, असत्य के प्रति श्रद्धा, और चलने के लिए भी एक नशा चाहिए। वो कौन सा? चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी क्रोध, मान, माया और लोभ को कहा है, और दर्शन मोहनी मिथ्यात्व को कहा है। मिथ्यात्व से हम विपरीत, हमारे लिए प्रतिकूल, हमारे लिए विपरीत, हमारे लिए दुखकारक विषय पर ही श्रद्धा होती है, ये दर्शन मोहनी का प्रभाव है। चारित्र मोहनी का प्रभाव उसकी ओर मोहित करता है, आकर्षित करता है, वो बुद्धि को भ्रष्ट बना लेता है। उसमें ही स्वार्थ तुम्हारा सिद्ध होगा, वहीं चलो। वह देता है, तुम मांगते नहीं, चलो जल्दी चलो, अमावस्या का दिन है, वो देता है, तुम जाते नहीं। लोग भी सभी कह रहे हैं, दुनिया बता रही तुमको, तुम समझते नहीं, जाओ इलाज करो इसका। जिंदगी में जो दुख की घड़ियां आ रही हैं, इन दुख की घड़ियों को दूर करने का कर्ता धर्ता वो देवता है। अमावस्या के दिन भीड़ लगती वहां, तुम जाते क्यों नहीं? दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, ऐसा लोभ जगाता है। चारित्र मोहनी कर्म लोभ जगाता है, और मिथ्यात्व कर्म वो पीछे चुपचाप खड़ा होकर कहता रहता, बिल्कुल तो तुम ठीक समझा रहे हो उनको, तुम बिल्कुल ठीक समझा रहे, मैंने तो इसी पर आस्था रखो कहा, मानता नहीं है। ये दर्शन मोहनी चुपचाप खड़ा रह करके चारित्र मोहनी को आगे करता है, समझाओ उनको जरा। चारित्र मोहनी कर्म समझा देता है, चलो ना तुमको क्या चाहिए, पूछता है वो, तो मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, सुख चाहिए, और क्या चाहिए, पति का सौभाग्य हो, घर में बाल बच्चे अच्छे हों, सदा धन संपत्ति बना रहे, यही तो चाहता हूं। तू ये सब चाहते हो तो मैं तो रास्ता बता रहा हूं, चलो ना, अमावस्या है। ये चारित्र मोहनी का प्रभाव है, ये भी एक नशा है। हम अमावस्या के दिन असत्य के सामने जाकर के खड़े हैं, जो देता नहीं उसको देता कह करके मान्यता बना करके खड़े हैं, तो ये मिथ्यात्व का प्रभाव, और वहां तक हमको जो ले गया वो चारित्र मोहनी का प्रभाव। चारित्र मोहनी कर्म खींच के ले जाता है, कुछ ऐसा जादू कर लेता है, जादू टोना, कि आपको वही 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 चलने लगे, वही ठीक वही ठीक, मूड मुग्ध हो जाते हैं। जो देता नहीं उनके प्रति मुग्धता, ये अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी का प्रभाव। और उसमें जो विश्वास बैठा है वो किसका प्रभाव? वो है दर्शन मोहनी का प्रभाव, मिथ्यात्व का प्रभाव। सब कर्म का खेल है, ये है कर्म का प्रभाव, ये कर्म का खेल। और दुनिया क्या कहती है? सब ईश्वर का खेल। ईश्वर का खेल वो फलाने माता का खेल और फलाने जाता का खेल। दुनिया भटकी हुई है, भटकी दुनिया को ही तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है। उन्होंने जो सत्य है उसको कहा है, जो वस्तुतः दुख का कारण कौन है इसको खोजा उन्होंने। संसारी प्राणी दुखी किस वजह से हैं इस बात को खोजी, संशोधन किया, उसको पकड़ा, अनुभव से भी देखा, जीवन में भी उतारा, देख देख करके प्रैक्टिकल किया। जब प्रैक्टिकल किया तो जिस कारण से वो स्वयं दुखी थे तीर्थंकर, उन सारे कारणों को हटाया गिराया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब हमने अपने जीवन में अपने दुख को कैसे दूर किया, कैसे हमने दुख के कारणों को अपने से गिराया और सुख पा लिया, इसको उन्होंने अनुभव से देखा। और जो गिरा था, क्या गिरा मेरे से, उसी का व्याख्यान किया। ये किसी दूसरे का व्याख्यान नहीं, खुद ने जो अनुभव किया उसका व्याख्यान है। और केवल ज्ञान के पश्चात तो सबका ज्ञान में आता है, खुद का भी आता है और पर का भी आता है। दुनिया में जो कर्मधारी जीव हैं, पाप पुण्य का फल भोग रहे हैं, उनका भी दिखता है, खुद का भी दिखता है, दोनों सत्य दिखते हैं। संसार का सत्यासत्य वो भी दिखता है, खुद का भी सत्यासत्य वो भी दिखता है। अब ये पुद्गल कर्म कितने सूक्ष्म है, अगर ये हमारे आंखों के लिए दिखने योग्य होते तो आज हम मिथ्यात्व को छोड़ देते। पर छोड़ क्यों नहीं रहे थे? वो दिखते नहीं थे, रास्ते में चलते हुए कांटा दिखा, बहुत सारे कांटे बिछाए थे, उस पर से कोई चलता है क्या? क्यों दिखता है और फिर क्यों चलेंगे हम? अगर वो कांटे इतने बारीक कि दिखते ही नहीं, फिर बचोगे कैसे? पांव देख करके ही चलोगे? अगर कर्म जैसे कांटे भी बारीक होते तो हम कांटे से भी नहीं बचते, क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। कर्म दिखेंगे नहीं, दिख नहीं सकते, छद्मस्त के आंखों में वो शक्ति नहीं कि उन कर्म पुद्गल परमाणुओं को जो बंधे हैं अनादिकाल से उनको देख सके, ऐसे हमारे आंखों में वो शक्ति नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद कर्म भी दिखते, उससे पहले नहीं दिखते। अवधि ज्ञानी को, मनपरे ज्ञानी को थोड़ा थोड़ा आभास होता है, पर मति ज्ञानी और श्रुतज्ञ ज्ञानी को तो कुछ भी आभास नहीं मिलता कि ये कर्म पुद्गल है और ये आंखों से दिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। कर्मों का फल दिखता है, कर्म नहीं दिखते। ये कैसे महाराज, फल तो दिखता है और कर्म नहीं दिखते। देखो ना आप, कोई अमावस्या के दिन जा रहा है तो ये कर्म का फल है क्या? नहीं, ये किस कर्म का फल? दर्शन मोहिनी का फल। जा रहा है ये अनंत अनुबंधी का फल। एक एक कदम लोभ है, चाहिए 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 चाहिए, लोभ मोह है वो। सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, प्रति कदम सुख चाहिए कह करके दौड़ रहा है। ये चारित्र मोहिनी अनंत अनुबंधी कर्म। और आस्था से जा रहा है ये दर्शन मोहिनी का कर्म। आस्था श्रद्धा ये चारित्र मोहिनी है। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी, अप्रत्याख्यान चारित्र मोहिनी, प्रत्याख्यान चारित्र मोहिनी, संज्वलन भी चारित्र मोहिनी, अकषाय नौ नौ नौकषाय भी चारित्र मोहिनी कर्म। ये सारे चारित्र मोहिनी कर्म हैं। इनका फल, फल तो दिखता है लेकिन कर्म नहीं दिखते। व्यक्ति रोता है किस कारण से? रो रहा, शोकित है, दुखी है, शोक होता है मन में। ये किसका? हास रति अरति शोक, ये कौन सा कर्म? ये अकषाय चारित्र मोहिनी कर्म। व्यक्ति रोता है किसका प्रभाव है? चारित्र मोहिनी। व्यक्ति को गुस्सा आता है कौन सा कर्म? चारित्र मोहिनी। व्यक्ति लोभी है किसी से, किसी पदार्थ से, किस कौन सा कर्म? चारित्र मोहिनी। व्यक्ति हंसता है, हास्यरति अर्थ इसमें आएगा। व्यक्ति घृणा करता है, ये जुगुप्सा हो गया, ये कौन सा कर्म? चारित्र मोहिनी कर्म। दूसरे से घृणा, दूसरे से ही घृणा नहीं, कभी कभी अपने से भी घृणा कर सकता है। जो अपने से घृणा करता है, अति घृणा करता है, तो आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। आत्महत्या, अपने प्रति घृणा है क्या? नहीं, मैं अपने आप को मिटा डालूं, ये किसके प्रति घृणा? स्वयं की जिंदगी के प्रति, स्वयं के प्रति घृणा है ये। ये चारित्र मोहिनी का प्रभाव है। व्यक्ति दूसरे चीज से घृणा करता है, दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है, दूसरे जीव समझ में नहीं आते। तुम क्या बड़े, तुमको कौन कहने वाले, ऐसे विचार जो आते हैं, वो कौन सा कर्म? वो जुगुप्सा चारित्र मोहिनी कर्म। व्यक्ति डरता है, भयभीत है, ये कौन सा कर्म? हास्यरति अर्ति शोक भय, ये चारित्र मोहिनी। डरना भी चारित्र मोहिनी। आपको कर्म ने किस किस ओर से घेर के रखा है, इसका अध्ययन आपने अगर नहीं किया, जिंदगी बेकार है। कर्मों ने हमें कैसे जकड़ रखा है और वो कैसे हमें नाच नचा रहे हैं, इसका अध्ययन अगर हम नहीं करते, चिंतन अगर नहीं करते, विचार अगर नहीं करते, तो जिंदगी बेकार जाएगी, सत्य से दूर रहेंगे हम। जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डर रहे, ऐसा हो रहा है। यही तो नशा है। शराब पेट में जाने के बाद वह शराबी कहता है, कुछ भी कहता है, यानी जिसको देख करके जैसा कहना चाहिए वैसा नहीं कहता, और जिसको देख करके जैसा कहना चाहिए था वैसा नहीं कहता। शराबी का ये शराब का प्रभाव। चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण से जीव निरंतर प्रति सेकंद कुछ न कुछ कर रहा है। ये चारित्र मोहनी का ही प्रभाव है, और इसका अस्तित्व दसवें गुण स्थान तक है। इसका प्रभाव दसवें गुण स्थान तक है। दसवें गुण स्थान का उल्लंघन यदि कर गए तो गुरुत्वाकर्षण के उस पार हुए, और फिर वो वस्तु नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाती है, फिर तैरने लगती है, तैरने लगती है। मोहनी कर्म इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण, एक ही परिभाषा, एक ही शब्द में मोहनी कर्म का अर्थ पूछना चाहो गुरुत्वाकर्षण, जो आपको संसार में जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, गुरुत्वाकर्षण के भीतर आपको बनाए रखता है, उसका नाम है मोहनी कर्म। और इस गुरुत्वाकर्षण की खोज करो, फिर ये कैसे हमें पकड़ के रख रहा है इसका भी आविष्कार करो, और फिर ऊपर उठ करके देखो क्या होता है। थोड़ा 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 ऊपर उठते जाओ, फिर पता चलेगा कि मैं नीचे से ऊपर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण मुझे पकड़ के रख रहा था, परंतु मैं अपनी इच्छा शक्ति से यदि ऊपर उठना चाहूं तो उठ सकता हूं, परंतु इच्छा शक्ति नहीं थी अनादिकाल से। हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ, हमारी इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुई, और जागृत नहीं हुई इसलिए हम आज तक ऊपर नहीं गए। आत्मा का शुद्ध स्वभाव ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव, नीचे रहने का स्वभाव ही नहीं है ये। जैसे फुग्गे में एक गैस होती है, वो फुग्गा ऊपर ही उड़ता जाता है, इतना हल्का बन जाता है वो, ऊपर उठता है। कौन सी गैस बोलते हैं उसको? फुगे में गैस भरने के उपरांत वो ऊपर उठता है, उसमें चूना और बैंगड़ी मिला देते, हाइड्रोजन क्या? हाँ, हाइड्रोजन गैस भरने से वो फुग्गा यहाँ छोड़ दो, यहाँ नहीं रुकेगा, वो ऊपर जाएगा। फुग्गे में ऊपर उठने की शक्ति है कि नहीं है? लेकिन क्या कमी है उसमें? उसमें ऑक्सीजन गैस है, यही गलत है। ऑक्सीजन नीचे होता है, वो ऑक्सीजन ऊपर नहीं होता। हाइड्रोजन नीचे नहीं रहता, वो तो ऊपर उठता। हाइड्रोजन वस्तु को भी ऊपर ले जाएगा और खुद भी ऊपर जाएगा। ऐसा हाइड्रोजन गैस चाहिए आत्मा में, आत्मरूपी फुग्गे में हमको हाइड्रोजन गैस भरना है। अभी क्या है, फुल ऑक्सीजन गैस भर करके रखा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये गैस, आठ कर्मों का गैस, ऑक्सीजन गैस है ये, इसको भर करके यहाँ रखा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस भरना पड़ेगा। वो क्या चीज है? परिणामों में वीतरागता, वीतराग परिणाम हाइड्रोजन गैस है। आत्मा को वीतरागी बनाना, इच्छा शक्ति दृष्टि से पहले तो उसको जगाओ, वस्तु स्वरूप समझो, क्या परिस्थिति है अध्ययन करो, और इसी इच्छा शक्ति से आत्मा को वीतराग बनाना जो ही शुरू करोगे हाइड्रोजन गैस भरता जाएगा, आपका शरीर भी ऊपर उठेगा, आत्मा भी ऊपर उठेगी। केवल ज्ञान के पश्चात कोई धरती पर नहीं चलते, क्योंकि 50% हाइड्रोजन गैस उनमें भर गया है केवल ज्ञानी के लिए। अरहंत ऊपर ही हैं, क्यों? घाती कर्म नहीं है तो ऑक्सीजन खत्म हो गया ना, हाइड्रोजन गैस भर दिया है, ऑक्सीजन बाहर निकाला और हाइड्रोजन भर दिया। तो वीतरागता रूपी हाइड्रोजन गैस जितने प्रमाण में वह भरता जाएगा उतने उतने आत्मा और शरीर दोनों अधर में जाएंगे और चार कर्म नष्ट होंगे तो 50% उठेगा, और आठों कर्म नष्ट करोगे तो फुल हाइड्रोजन गैस भर जाएगा। तो यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि लोक का अंत न आ जाए। तो सिद्ध परमिष्टि कहां रहते हैं? लोक के मस्तक, लोक का मस्तक शिखर जहां रहता है वहां रहते हैं। तो वहां जाकर के ठहर गए, क्यों ठहर गए? उसके बाद क्यों नहीं जा रहे हैं? आलोक आकाश में क्यों नहीं जाते? जगह तो है उधर। हाँ, अब ये धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, वो भी अनंत शक्तिशाली है। सिद्ध भगवान की आत्मा भी अनंत शक्तिशाली और धर्म द्रव्य की शक्ति भी अनंत शक्तिशाली। ये गमन स्वभावी है और धर्म द्रव्य गमन स्वभावी नहीं है। ये ऊर्ध्वगमन स्वभावी, अधोगमन स्वभावी, इधर उधर गमन स्वभावी। संसार में रहकर जब तक कर्मों से बंधित है आत्मा तब तक वह ऊपर भी जा सकता, आजू बाजू में जा सकता, नीचे भी जा सकता, कहीं भी जा सकता, परंतु कर्मों से अगर मुक्त हो गया तो वह एक ही रास्ता पकड़ता है। किधर का? ऊर्ध्वगमन का। फुग्गे में जब तक ऑक्सीजन है इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता है, नीचे दबाओ तो नीचे भी जा सकता। आप हाइड्रोजन भर करके वो करोगे तो इधर मारोगे तो ऊपर ही जाएगा, नहीं मानेगा वो। फुग्गा नहीं मान सकता, सीधा जाता है, टेढ़ा जाता ही नहीं वो। ऐसे आत्मा के पास भी वही शक्ति है, जैसे फुग्गा सीधा ऊपर ही जाता वही शक्ति है, लेकिन वह शक्ति कब आएगी? आत्मा को वीतराग बनाने के बाद। और आत्मा वीतराग कब बनेगा? मोहिनी कर्म और दर्शन मोहिनी कर्म को नष्ट करने के बाद, इनको नष्ट कर। कर्मों के नाश के लिए धर्म है, कर्मों के नाश के लिए भगवान साधन है हमारे लिए। कर्मों को नाश करना है इसलिए गुरु हैं, कर्मों को नाश करना है इसलिए शास्त्र है। देव शास्त्र गुरु, इनका प्रयोजन क्या है? ये हमारे आलंबन है। साइकिल किस लिए है यही मालूम नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? साइकिल किस लिए है? हाँ, जाने के लिए है कि देखने के लिए है? दर्पण किस लिए है? देखने के लिए है। तो गुरु किस लिए है? मार्ग दिखाने के लिए। गुरु भी हमको मोक्ष जाने के लिए है, जाने के लिए है गुरु भी। गुरु भी जाने के लिए है। कहाँ जाने के लिए? मोक्ष जाने के लिए। शास्त्र भी हमारे लिए जाने के लिए है। वो कहाँ जाने के लिए? मोक्ष जाने के लिए। भगवान भी हमको जाने के लिए है। कहाँ जा रहे हो? तो मोक्ष। बिना भगवान के कैसे जाओगे? कहाँ जाए? कोल्हापुर। बिना साइकिल मोटर के कैसे जाओगे? पैदल जाऊंगा। पैदल जाओ तो स्वयंभू। किसी का आलंबन के बिना कोई जा रहा है मोक्ष, तो जा सकता है। बहुत अच्छी बात है वो, सेल्फ डिपेंड। किसी के आलंबन के बिना हम जाएंगे, बहुत शक्तिशाली होगा वो, जो स्वयं सेल्फ डिपेंड होकर के स्वयं खोजेगा, शास्त्र नहीं पड़ेगा, मैं कर्मों को स्वयं देखूंगा, तो ठीक है, स्वयं भी देख सकते। तीर्थंकरों ने कहां अध्ययन किया? किस मुनि महाराज ने पढ़ाया? जन्म तो लिया उन्होंने किसी स्कूल और पाठशाला में जाकर के, ये कर्म है, ये ज्ञानावरणी, पाप और पुण्य, कोई अध्ययन किया नहीं। जिंदगी को प्रैक्टिकल बनाया। जिंदगी एक शास्त्र है, डायरेक्ट इस शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। मैं दिन भर क्या कर रहा हूं, ऐसा ही क्यों कर रहा हूं, चिंतन शुरू हो गया। मैं कौन हूं? मैं संसार में क्यों हूं? मैं इस शरीर में क्यों हूं? मैं आया कहां से? वहां से यहां आया तो ये मैं इसमें रह रहा हूं तो कैसे रह रहा हूं? ये कौन सी शक्ति? शरीर के भीतर कोई आत्मा रहती है और कोई आत्मा मृत्यु के पश्चात दौड़ जाती है, ये ऐसा बिछड़न क्यों होता है? और उतने समय तक रहा तो क्यों रहा? किस कारण से रहा? उस कारण को खोजा। और जब खोज के दौरान वो कारण पकड़ में आए तो उन्होंने कहा कि आयु कर्म है, ये आयु कर्म है। और फिर ये शरीर क्यों मिलता है? तो उन्होंने कहा शरीर नाम कर्म की वजह से मिलता है। नाम कर्म की जब तक खोज नहीं हुई तब तक नाम कर्म नहीं कहा। शरीर दिख रहा है ये कर्म का फल है, ये नाम कर्म का फल है। नाम कर्म नहीं दिखता। और नाम कर्म को हम बर हमेशा बनते रहते हैं, प्रति सेकंड, अभी भी प्रति सेकंड हम नाम कर्म को बांध रहे हैं, आयु कर्म को बांध रहे हैं, ज्ञानावरणी कर्म को। एक आयु कर्म को छोड़कर सात कर्म तो निरंतर बनते हैं। आयु कर्म जिंदगी में एक ही बार बनता है। नहीं, त्रिभाग में, दो भाग निकल करके त्रिभाग में बनता है, दो भाग व्यतीत हो। टोटल जो आयु आपकी होती है उसमें तीन भाग करो, दो भाग निकलने के बाद ही त्रिभाग में बनता है, उससे पहला नहीं। देव गति में, नरक गति में और भोग भूमि के जीवों में जो आयु का बंध होता है वो 6 महीने, आयु का अंतिम 6 माह शेष रहने पर आगामी आयु का बंध होता है। किंतु मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिरेंज के लिए आयु का बंध 6 महीने का नियम नहीं, स्पेशल नियम है। कर्म भूमि के जीवों के लिए स्पेशल नियम है, त्रिभाग में बंधता है। 60 साल की अगर उम्र है तो 40 से पहला तो नहीं बंधेगा। 40 व्यतीत हुआ, जिस क्षण 40 पार कर गया उसका अगला क्षण अंतर्मुहूर्त वाला जो रहता है वह आगामी आयु को बांधने का प्रथम चांस है। अब ये बंधे ये नियम नहीं इसमें, क्योंकि 8 चांस है ना, तो 8 चांस में से 1 चांस में बंधेगा। 8 चांस चूक गए, 8ों चांस चूक गए तो 9वें चांस में तो निश्चित रूप से बंद ही हो जाएगा, क्योंकि वो अंतिम समय रहेगा लास्ट। अब आयु कर्म बचा ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में रहेगा वो। पहला चांस 40 साल व्यतीत होने के बाद, परंतु 40 साल ये किसके लिए? जिनकी आयु 60 साल की हो, नहीं तो ऐसा मेरे से सुन लो कि महाराज जी ने तो कहा था कि 40 के बाद तो फिर आप 80 साल के थे और हमने कहा 40, तो गणित कैसे बैठेगा आपका? सबकी आयु कितना है ये मालूम हो तो आप त्रिभाग बना सकते हैं। मालूम है क्या? नहीं है, पर सिद्धांत ये है, त्रिभाग में आयु कर्म बनता है। अब 60 एक उदाहरण दे रहा हूं, पकड़ के नहीं बैठना कि 40 के बाद मुझे भी बनेगा, ऐसा नहीं, पकड़ के नहीं बैठना उसको। 40 के बाद 40वां जिस क्षण समाप्त हो गया, अगला अंतर्मुख जो है वो आयु कर्म का पॉइंट है, अंतर्मुख का। अगर उसमें नहीं बंध पाए, चार आयु में से कोई भी आयु को आपने नहीं बांधा, तो जो 20 साल रह गए हैं उसमें फिर त्रिभाग करो, दो में नहीं बंधेगा। तीसरा जब प्रारंभ होगा, तीसरे प्रारंभ होने के प्रथम अंतर मुहूर्त में दूसरा पॉइंट है, वहां बन सकता है, वो भी टल गया, तो फिर जो बचा हुआ आयु है 20 में से त्रिभाग करके जो तीसरा बचा था उसमें तीन भाग फिर करो, यानी हर बार त्रिभाग करो। कितनी बार त्रिभाग करो? 8 बार त्रिभाग, त्रिभाग 8 बार करो, शेष शेष जो बचता जाता है उसमें। और 8वीं बार भी अगर चुक गया तो 9वीं बार तो निश्चित रूप से बंधेगा, निश्चित हो जाएगा। तीर्थंकर भगवंतों ने इसको भी खोजा, उन्होंने क्या क्या नहीं खोजा, सोचो। उनके जैसे दिव्य ज्ञान है ही किसमें दुनिया में? अपन दुनिया को बहुत ऊंचे समझते थे कि हम तो अभी पैदा हुए हैं और तो दुनिया जो कर रही है वही तो मेरे लिए रास्ता है। देखा देखी, या तो ये सोचते थे पहले वाले जो हमारे बुजुर्ग थे करके चले गए, उन्होंने जो किया है वही तो रास्ता है मेरे लिए। हम दुनिया के लोगों के रास्ता को चुन करके चलते थे, और यही मिथ्या तो है। उसमें पहला पासुन वाली बात थी, और वर्तमान में जो दिख रहे हैं वो कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, तो उनके पीछे लग गए। केवली भगवान की वाणी सुनाई नहीं, ये सत्यवाणी, ये अमृतवाणी, ये ज्यों की त्यों धरी रही मंदिरों के अलमारियों में, पढ़े रहे सभी शास्त्र, हस्तलिखित रूप में पढ़े रहे, और ज्यादा लिखा नहीं जाता था, बहुत परिश्रम होते, एक शास्त्र को बनाने के लिए इतना परिश्रम हो जाता था कि महीनों तक लिखता था लेखक, प्रतिलिपि करता था देख देख करके। और इसलिए हमारी परंपरा में जो लोग हो गए अभी तक, वो विदाउट स्वाध्याय के मर गए हैं। मिथ्यात्व के साथ ही मरे। जिनवाणी दुर्लभ थी उस समय, क्यों? छापने का कोई साधन नहीं था, लिख करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब लिखा हुआ हर एक को पढ़े ये भावना भी तो आना चाहिए, विचार भी तो आना चाहिए। लोग कहते थे तुम सोले में नहीं शास्त्र मत छो, ये और विघ्न, छुआछूत धर्म है, इसको महान भूत बना के रखा था, तुम जब भी शास्त्र को छुओ तो ऐसा ही रहना पड़ता है, ऐसा ही बिल्कुल ठीक है, शुद्धि से ही देव शास्त्र गुरु को छूना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुद्धि तो होना ही चाहिए। लेकिन उसको अति मत करो, अति मत करो। क्या होता था पहले, वो थोड़ा सा भी छू लिया तो नहा के डूबो के आ जाओ, मर डूब करके आ जाओ। यानी कपड़े पहने, स्नान हुआ है, सब हुआ है, कपड़े पहन करके आए हैं, सब अच्छे, लेकिन जरा किसी ने स्पर्श कर दिया तो उनको गुस्सा आ गया, हमारे तुम्हारे सोले को बिगाड़ दिया। तो हमारा जैन धर्म इतना हाईएस्ट था कि बिल्कुल करंट पास जरा भी नहीं होना चाहिए। इतना सोले को महत्व दे दिया, सोले को महत्व दे दिया और उसी को धर्म समझा, कुछ शास्त्र पढ़े ही नहीं। शास्त्र से, स्वाध्याय से वंचित रहे हमारे बुजुर्ग लोग। उन्होंने मंदिर बनाया, श्रद्धा थी, मंदिर बनाया, श्रद्धा थी, रोज देव दर्शन करते रहे, लेकिन मंदिर के अंदर विवेक नहीं रहा, कौन वितराग और कौन सराग, कौन पूज और कौन अपूज, कौन वंदनी और कौन अवंदनी, कौन संयमी कौन असंयमी, ये विवेक नहीं रहा, ये विवेक समाप्त रहा। मंदिर तो बनाया और किसका बनाया, भगवान का ही बनाया, लेकिन साथ साथ ये भी मूर्ता रही कि उस भगवान के साथ में ये होना ही चाहिए, ये रागी भी होना चाहिए, ये मूर्ता रही। ये मूर्ता क्यों रही, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते थे, समझते नहीं थे। वीत रागी के साथ रागी रहना आवश्यक होता तो मुनियों के साथ भी एक कोई देवी देवता या श्रावक श्राविका रहना अनिवार्य होता, होता कि नहीं होता। श्रावक और श्राविकाएं ये भक्त हैं मुनियों के, अगर भगवान को ये नियम बनाते हैं कि भगवान के मंदिर के बांधने के बाद उसके साथ देवी देवता होना अनिवार्य है, तो फिर मुनियों के दिगंबर दीक्षा लेने के बाद एक श्रावक और एक श्राविका साथ में रहना आवश्यक है। ये नियम होता कि नहीं होता, अवश्य होता। जब भगवान को नियम है तो हमको तो डबल रहना चाहिए, भगवान के पास एक देवी देवता है तो हमारे पास 10 रहना चाहिए और साथ चलना चाहिए। वीत रागी के साथ रागी की क्या तुलना, वीत रागी के मंदिर में रागी देवताओं का क्या मूल्य है। आत्मा का कल्याण रागियों से होगा क्या वीत रागियों से, इसलिए उनको तो कहा आयतन, वीत राग आयतन है और राग अनायतन है, असयम अनायतन है। और ये बाहर की बात है, अंदर की बात नहीं, अंदर में भी आयतन अनायतन है। बाहरी आयतन अनायतन कौन, वीतरागी अरहंत भगवान आयतन। आयतन का मतलब क्या, जो जो साधन यानी जो माध्यम आत्म कल्याण के लिए सहायक हो वो आयतन, और आत्म कल्याण में जिनका सहयोग न हो वो अनायतन। असंयमी हमारे लिए सहयोग नहीं दे सकेगा, क्योंकि असंयमी से क्या मिलने वाला है, संयमी को उपदेश मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। असंयमी से कोई सहयोग नहीं मिलता। हाँ यदि मिलता है तो ये मिलता है, कोई उपसर्ग आने पर तुम्हारा टाल सकता मिलता है तो ये मिल सकता है, अगर तुम्हारे लिए भूख लगी तो आहार दे सकता है। आहार नहीं दे सकता। जो आहार देता है वो नियम से असंयमी, और जो आहार नहीं देता है वो नियम से संयमी। मुनि आहार दे सकते नहीं, देते हैं इसलिए तो संयमी, इसलिए तो वीतरागी। जो देता है वो रागी और जो लेता है वो वीतरागी। देने वाला पर वस्तु के पीछे है और लेने वाला स्व वस्तु के पीछे चल रहा है, उसकी साधना कर रहा है। और देने वाला पर वस्तु के पीछे उसको संग्रह करके कुछ दान में देता है और कुछ अपने में ले भी रखता है, दोनों का जीवन निभा रहा है। देखो कैसा है मोक्ष मार्ग, दोनों को निभा रहा है। धर्म संस्कृति धर्म को बचा रहा है, तो कौन बचा रहा है? असंयमी ही बचा रहा है। धर्मात्मा को बचा रहा है दान देकर, धर्मात्मा को बचा रहा है, इसका तात्पर्य धर्म को बचा रहा है, धर्म जीवित है। पेड़ को बचा रहे हो तो क्या आम को नहीं बचा रहे? आम तो ऊपर लगे हैं, पेड़ को काट नहीं रहे हैं, पेड़ को सुरक्षित रख रहे हैं, जल डाल रहे हैं, उसको खाद डाल रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। किस लिए? आम मिलेंगे मुझे भी। तो आम की चाह से जैसे पेड़ की रक्षा होती है, वैसे धर्म की चाह से, धर्म आम है और धर्मात्मा पेड़ है, धर्मात्मा के शरीर को बचाओगे तो तुम्हें धर्म का लाभ मिलेगा, आम खाने को मिलेंगे, उनका उपदेश आम है। आम तौर पर सुनो, आप क्या बता रहा हूं, उनका उपदेश आम है और उनका शरीर पेड़ है। आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? पेड़ की रक्षा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आम मिले, क्योंकि आम मिले बाद में दाम मिले। आम मिले बाद में दाम मिले, बीच में काम मिले। आप ये करते हैं। इसमें तीर्थंकर भगवान ने कहा कि लेने वाला और देने वाला दोनों महान हैं, दोनों महान हैं, परंतु एक संयमी है और एक असंयमी। जो दे रहा है उसके पास आम नहीं है, और जो ले रहा है उसके पास आम है। पेड़ को आप जल दे रहे हैं परंतु आपके पास आम नहीं है, आपको आम देगा पेड़। जो आहार दे रहा है पेड़ को उसके पास आम नहीं है, उसके पास एक भी आम नहीं, न पैदा कर सकता है। यदि आम पैदा करना हो तो झाड़ की क्या जरूरत है? यदि आम पैदा करना हो तो मृत्यु के पश्चात पेड़ बनो तो आम दे सकते। यदि यहां पर आप भी आम बांटना चाहते हैं तो असंयम को छोड़ो, खुद धर्मात्मा बन जाओगे, धर्म को बांट सकोगे। जिनेंद्र भगवान ने कहा श्रावकों से, तुम दोनों महान हो, देने वाला भी महान और लेने वाला भी महान। ये नीचे दे रहा है और ये ऊपर से दे रहा है। आम किधर से आता है? ऊपर से। और उपदेश किधर से आता है? नीचे से। ये भी तो ऊपर से जा रहा है ना। विचार तो करो तुलनात्मक ढंग से। उपदेश देने वाले ऊपर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं। आम के पेड़ को आहार देने वाला नीचे जाता है और आम अपना फल ऊपर से देता, खुश होता है वो, मुझे आहार दे दिया तुमने, टपक एक पका हुआ आम गिरा दिया। उठा लेते हैं, कहते हैं कितना अच्छा पेड़ है, इधर पानी डालते ही एक आम दे दिया उसने। कल्प वृक्ष है हमारे खेत में, कल्प वृक्ष है। कोई कोई आम का पेड़ आपके द्वारा जल देने पर आम देता भी है और नहीं भी देता। कोई ऐसे पेड़ भी होते हैं, आप जल तो दे रहे हैं, आशा से दे रहे हैं कि फल देगा, लेकिन वो फल ही नहीं दे रहा है। ऐसा यहां पर भी है, मुनि महाराजों का कोई भरोसा नहीं, उपदेश दे दें, क्योंकि वो स्वयं के लिए स्वयं कल्याण कर रहे हैं। और दया अगर आ गई तो उपदेश मिलेगा, दया नहीं आई तो उपदेश नहीं मिलता। जिस पेड़ को दया है वही आम देगा और जिस पेड़ को दया नहीं वो आम नहीं देगा, छाया देगा, छाया देगा। अपनी छत्र छाव में रहो, आनंद लुटाओ, जाओ, खाने के लिए कुछ नहीं देंगे हम। छाया देगा। तो जो मुनि महाराज उपदेश ना दो, उपदेश दिए बिना ही मोक्ष जाते हो, उनको तो मूक केवली कहा, केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान को भी मूक कहा, उनको मूक कह दिया। बताओ आपको मूक कहें तो बुरा लगता है कि नहीं? क्या मूक है, क्या बोलते नहीं आप, बुरा लगता है कि नहीं? ये गाली जैसा है शब्द, गाली जैसा है। लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। उस केवली का नाम क्या है पूछा तो मूक केवली। बिना उपदेश दिए तो मोक्ष नहीं जा सकते क्या? मोक्ष जाने का सिद्धांत अगर उपदेश देने पर ही जाते हैं, ऐसा होता ना तो बहुत मुश्किल हो जाता। जो जो बीज बोने के बाद पेड़ तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता, फल नहीं देता, ऐसा बीज क्या पेड़ भी नहीं बनता? तो पेड़ बन करके क्या सूखता भी नहीं? सूखता भी है, पेड़ भी बनता है, सूखता भी है, लेकिन उसमें कौन सी शक्ति नहीं? फल देने की शक्ति नहीं। ऐसे हम मुनि तो बन गए, केवली तो बन गए, तो फिर केवली बनेंगे तो क्या मोक्ष नहीं जा सकेंगे? आयु समाप्ति के बाद केवल ज्ञानी कहाँ जाते हैं फिर? केवल ज्ञान तो हो गया है, आयु समाप्त हो गया, अब कहाँ जाएंगे हम? मोक्ष ही जाएंगे। केवल ज्ञानी नियम से मोक्ष जाते हैं और जो उपदेश देना आता है वही मोक्ष जाते हैं क्या? उपदेश की कला जिसमें है वही मोक्ष जाता है, नहीं तो उपदेश की कला जिसमें नहीं होती वो मोक्ष ही नहीं जाते। ऐसा नहीं, मोक्ष तो जा सकते लेकिन विदाउट फल का पेड़ कहलाओगे, बस इतना ही। छाया तो दे सकते हैं, छाया का मतलब ये है कि उनके आसपास में आकर के बैठ जाओ, मूक केवली है कोई बात नहीं, उनके आसपास में आकर के बैठ जाओ, उपदेश उनसे आपको मिलता है, लेने वाला चाहिए। देते नहीं तो कैसे मिलता है महाराज? देने की जरूरत नहीं, हम जैसे बैठे हैं हमको देखो और हमारा अध्ययन करो, ऐसा ही क्यों बैठे हैं विचार करो। तो उनके निमित्त से तो मिल रहा है, ये चिंतन भी तभी होगा जब उनके सामने बैठोगे। तो साक्षात मूर्ति मुनि महाराज की प्रतिमा, साक्षात जीवित मूर्ति है वो, उनके सामने बैठोगे तो अपनी जिंदगी से उनकी जिंदगी की तुलना मन करने लगता है कि नहीं? तो यही तो उपदेश है, मुझे क्या करना चाहिए, ये ऐसा क्यों है। पहलवान उपदेश नहीं देता, लेकिन पहलवान मैदान में दिखता है क्या नहीं? लेकिन देखने वाले उस उनकी शक्ति को देखने वाले कई लोग ये सोचते हैं मेरे में भी ये ताकत होता तो मैं भी मैदान में सोचते हैं क्या नहीं? तो यही तो उपदेश मिल रहा है। अगर आपको ये भाव आ गया कि पहलवान जैसा ही मुझे बनना चाहिए तो ये उपदेश का फल है, ये उपदेश ही नहीं बल्कि उपदेश का फल मिल गया आपको, उपदेश का फल मिल गया। तो उपदेश तो लेना पड़ता है अपने को, मूक केवली से उपदेश लेना पड़ता है, वो देते नहीं और दे बिना मोक्ष जाते हैं, और देने का कोई नियम नहीं। ऐसा मत सोचो कि दीक्षा लेंगे तो उपदेश मुझे तो देना आता नहीं, कैसे लेऊं? कई लोग सोचते हैं, इतना भी उनको ज्ञान नहीं, वो पहले से सोचते हैं मुझे उपदेश देना आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, तो मुनि बनने के बाद तो उपदेश देना ही पड़ता है, ऐसा सोचते हैं, गलत सोचते हैं वो। कोई नियम नहीं, आपकी दीक्षा के बाद आप उपदेश दो ये कोई नियम नहीं, दीक्षा के साथ उपदेश का कोई संबंध नहीं। दीक्षा आत्म कल्याण के लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और फिर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं महाराज आप ठीक कहते तो ठीक है, लेकिन उपदेश नहीं देंगे तो हमको आहार भी नहीं देंगे तो क्या करूंगा? अरे तुम कल्याण नहीं कर पाओगे, तुम उल्टे सीधे सोचते हो। ऐसा हो सकता है क्या दिगंबर मुनि सच्चे मुनि आ गया और आहार न दे? अरे झूठे मुनियों का आहार मिल रहा है दुनिया, खोटे नोट चल रहे हैं तो फिर सच्चे नोट चलेंगे नहीं क्या? क्यों विश्वास नहीं रखते? खोटे नोट चल रहे हैं तो सच्चे नोट नहीं चलेंगे, अविश्वास है आपको? अरे क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, गलत सोच है, विवेक से सोचो। हार का सोचना ही चाहिए, नहीं चाहिए। देखो बीज ये नहीं सोचता कि मैं यही मिट्टी में पड़ा रहूंगा, उगूंगा तो कौन मुझे पानी डालेगा, बीज सोचता। लेकिन उगता पानी मिलता, मिलता कि नहीं मिलता? अगर वो उग रहा है तो बादल खुश हो जाते हैं, उस पेड़ के ऊपर ही आ जाते हैं वो। जहां जंगल अधिक होता है वहां ज्यादा पानी बरसता है, ये पेड़ों का पुण्य है, विदाउट मांगे आहार आ जाता है, मांगने की जरूरत नहीं, तुमको तो उगने की जरूरत है, आहार तो ऑटोमेटिक पीछे पड़ेगा, तुमको तो उगने की जरूरत है। हाँ उसे कौन पानी देता है? उसको पानी सीमेंट के अंदर, यहाँ एक बीज वहां पटका दो और चले जाओ, एक साल के बाद उगने लग जाएगा। कैसे? सीमेंट में एक बूंद पानी नहीं, जरा भी पानी नहीं, वहां कैसे उग रहा है वो? हाँ उस पेड़ से शिक्षा लो, देखो आहार नहीं मिलता है उसको मालूम है, फिर भी वहीं उग गया, फिर आहार कहाँ से मिलने लगा? यही तो चमत्कार। जो ये साहस करता है कि जहाँ आहार नहीं मिलता वहीं भिक्षा ले लेता है, उसको आहार मिलेगा। उस बीज ने कितना साहस किया है, सीमेंट में और ऊपर छत पर जमीन पर भी नहीं, कोई टच नहीं, सीमेंट पर उग रहा है वो, और आप परेशान होते हटो तुम मत उगो। आप 10 बार काटते हैं तो 14 बार भी 11वें बार भी उगता है, आहार कहां से मिल रहा है? आहार उस पेड़ को सृष्टि ये प्रकृति कहती है तुम चिंता मत करो, तुम छत पर भी हो तो मैं आहार दे करके जाऊंगा तुमको, ये जरूरी नहीं तुम पेड़ हो तो जमीन पर ही उगे तो तुम्हें आहार मिलता है, तुम आकाश में भी हो तो मैं पहुंचा दूंगा आहार, प्रकृति ये कहती है। और प्रकृति से उसे आहार मिलती है, ये जो वायु है ये रात को ठंड हो जाती है, ये ठंडी वायु इसमें जल कण होती है कि नहीं, इन जल कणों को वह पत्तों के माध्यम से ग्रहण कर लेता है। वनस्पति को लेपाहार होता है ये कहा है, लेपाहार का मतलब संपूर्ण शरीर से आहार को वो ग्रहण कर लेता है, पत्तों से भी जड़ों से भी शाखा से भी, ये जो वायु है ठंडी वायु इसमें जलकण होते हैं, इन ये वायु जब स्पर्श होती है उसके माध्यम से उन जलकणों को जल्दी जल्दी जीव ग्रहण कर लेते हैं, आहार हो गया उनका, कितना चाहिए उनको आहार, रात भर जो ठंडी लगी वही आहार, उस ठंड वायु के भीतर जल है, तुम आकाश में भी उग सकते हो। वो पेड़ जरूरी नहीं कि धरती वो सीमेंट पर रहे, आकाश में भी अगर बीज उग जाए और ऐसा ही खड़ा रहे तो भी हरा भरा रह सकता है, किसी भी वस्तु से टच होने की जरूरत नहीं। आप देखते हैं अपने घरों में रखे हुए गेहूं चना मसूर, कहीं उनको जरा पानी लग गया तो अंदर अपने आप उग रहे हैं कि नहीं, कहां जमीन से टच है वो। बीज को तुम आकाश में भी रखो अंकुरित हो सकता है, सिर्फ उसको चाहिए जल पानी। अब पानी तो सब जगह है, कहीं भी रहो तुम पानी सब जगह है, कहीं भी रहो तुम आहार तो मिलेगा दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि चर्या को देखते ही पता चलता है कि इसके लिए क्या जरूरत है। अगर कोई मनुष्य आहार नहीं देता है मुनि को तो जिस दिन मनुष्य देना बंद करेगा और वास्तव में वो मुनि है तो देवता आ जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से, वो भी देखते हुए बैठे हैं कोई कर रहा है क्या नहीं, कर रहा है इसलिए देवता लोग नहीं आ रहे, आहार मिल रहा है मनुष्यों के माध्यम से इसलिए देवता नहीं आ रहे। अगर मनुष्य कोई भी नहीं रहा और वास्तव में सही में मुनि है तो आहार नहीं मिलेगा। हम भी तो कहते हैं ऊपर वाले सब देखते हैं तुम्हारी चिंता नहीं हमें। लेकिन ऊपर वाले देखते हैं यह हम अंधविश्वासी नहीं हैं। आप क्या कहते हैं उनके भरोसे से करते हैं, वो देता नहीं और उनके भरोसे से आप रहते हैं, आप अपने पुण्य से आपकी गाड़ी चलती है। अब रोज रोज तो ऊपर के वालों के माध्यम से नहीं चला सकते आप, ऊपर वाला तब सहायक बनता है जब तुम्हारे लिए कुछ जीने का कोई आधार न हो, तब ऊपर वाला दिखता है, ऊपर वाला तब आता है, तब तक के लिए उससे पहले तब तक के लिए तो तुम्हारे पुण्य की गाड़ी से जो भी यहाँ व्यवहार चलते रहते हैं उसमें जो सुखी होते हो वो यहाँ के निमित्तों से होते और उसमें पुण्य आपका काम करता रहता है। यही है ना, तुम दुकान में बैठते ग्राहक आए, ये किसका पुण्य है? पुण्य के बिना ग्राहक नहीं आता। पुण्यवान व्यक्ति को ढूंढता हुआ ग्राहक आ जाएगा वहां। हमारे पुण्य में इतनी ताकत है, ताकत चाहिए कि व्यक्ति ढूंढता हुआ यहां आ जाए। आता ही है, आता ही है, क्योंकि आपके ऊपर उनका विश्वास बैठ गया तो आपको ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि उसका जीवन आप पर डिपेंड हो जाएगा और आपका जीवन उन पर डिपेंड हो जाएगा। दोनों का जुड़ाव ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ग्राहक को आकर्षित बनाए रखो। कैसे रखो? अपने पुण्य के बल पर, अपने धर्म के बल पर, अपनी क्रियाओं के बल पर, अपने विश्वास के बल पर, अपने कार्य कलापों में आकर्षित रहे हमसे। पापवान व्यक्ति आकर्षित नहीं रख सकता, क्योंकि उसका पाप कर्म ही उसको फल देता है। उसका पाप कर्म ही उसको फल देता। आकर्षित करके जो नहीं रख पा रहा है वो पाप कर्म का उदय है, और जो आकर्षित करके रख रहा है वो पुण्य कर्म का उदय है। जो सर्कस करता है, मेहनत तो होती है, पुण्य चाहिए कि नहीं उस कला को हासिल करने के लिए अपने जीवन में, और जिसका पुण्य नहीं है शरीर साथ नहीं देगा, सर्कस नहीं सीख सकेगा। ऐसा ही सर्कस ही है ये व्यापार। क्या है आपका? एक सर्कस है, एक कला है, और वो कला पुण्य से आती है। व्यापार की कला पुण्य से आती है और वो पुण्य पूर्व का होता है। वो पुण्य कैसा आता है? तो सत्य पर विश्वास करने से, सत्य से चलने से पुण्य ज्यादा इकट्ठा होता है, और उस पुण्यवान जीव की रक्षा करने वाली, रक्षा करने वाले प्रकृति ही क्या, सभी लोग उसकी रक्षा में लग जाते हैं। प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। आकाश में बीज है लेकिन प्रकृति कहती चिंता मत करो, मैं वहां पर भी हूं। और रक्षा करती है, प्रकृति रक्षा करती है। जब कोई भी सहायक नहीं होता तब प्रकृति सहायता पहुंचाती है। जब हमारा कोई भी नहीं बचेगा, अकेला धर्म ही हमारे पास बचता है। वो आपको छोड़ करके कभी जाता नहीं है। सब जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या न जाए? धर्म न जाए। सीता ने यही कहा जंगल में, मेरे को घर से निकाल दिया, मुझे चिंता नहीं। फिर परीक्षा की घड़ी आई है, मुझे घर से निकाल दिया, कोई चिंता नहीं। अग्नि परीक्षा लेना चाहती हैं, उसका भी कोई मुझे भय नहीं। मैं दुनिया के दृष्टि में गलत हूं, इसका भी मुझे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। लोग कुछ भी कहें, कहते रहेंगे, सत्य तो सत्य ही होता है, उसको कौन बिगाड़ सकता है? वो सत्य धर्म है, मेरे साथ में है, मेरे पास में है, खत्म बात। दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। दुनिया जो ऐसे कह रही है उसका अशुभ कर्म का उदय है, और ये मेरा भी अशुभ कर्म का उदय है। मैंने कुछ ना कुछ किसी पर कुछ ना आक्षेप किया होगा, इसलिए मुझे ये सब कह रहे हैं। कहने दो, लेकिन सत्य तो मेरे पास है ना, मैं कैसे हूं मेरे मन को मालूम, मेरी आत्मा को मालूम। सीता यही सोचती रही जंगल में, मेरे को मालूम, मेरे आत्मा को मालूम। अगर दुनिया आकर के मेरे पर उपसर्ग भी करे, प्राण भी ले लें, तो धर्म तो मेरे से अलग नहीं होगा। वो सत्य जो है, सत्य कभी मरता नहीं, सत्य साथ चलता है, यहां भी साथ है और अगले भव में भी साथ रहेगा। और सत्यवान जीव के ऊपर चाहे तुम घोर उपसर्ग कर लो, वो पुण्य बंद करना छूटता नहीं, उसका पुण्य बंधता ही रहता है। बर्फ के गोले को तुम आग बरसा करके उसको, आग जल जाए, वो भस्मीभूत हो जाए बर्फ, बर्फ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बर्फ पिघल करके अलग हो जाएगा, जलने वाला नहीं है। सत्यवान व्यक्ति का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसमें ताकत होती है, एक पावर ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के बल पर वह जीता है। उसको परास्त करने की शक्ति दुनिया में प्रकृति के पास भी नहीं है। प्रकृति स्वयं कहती है, तुम्हारे पास जो अनंत शक्ति है वही शक्ति मैं भी हूं। जब बीच के लोग तुम्हें कष्ट देंगे, लास्ट में मैं आ जा करके तुम्हारी रक्षा करूंगी, ये प्रकृति कहती। दोनों शक्तिशाली, आपकी आत्मा भी शक्तिशाली और प्रकृति भी शक्तिशाली। प्रकृति कहती है डरो मत, सत्य के विषय में मत डरो, असत्य से डरो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो। भू नका संयम धारण करा, प्रकृति कहती है, और जो प्रकृति कहती है वही शांति सागर जी ने कहा। जो प्रकृति बोलती है वही गुरु बोलते हैं। अब गुरु बोल रहे हैं, संयम धारण करो, डरो नहीं, ये मत चिंता करो कि आहार कौन देगा, ये चिंता मत करो, ये भी चिंता मत करो कि मुझे उपदेश देना आता नहीं। तुम संयम धारण करो, कल्याण करो, रत्नत्रय का धारी बन जाओ, शीतलाचारी मत बन जाओ, परिग्रह मुक्त बन जाओ, संयम धारण करो, भेव नका। ये उन्होंने अनुभव से देखा, गुरु शीतलाचारी थे और शिष्य को समझ में नहीं आया वो मार्ग। ये तो भट्टारकी मार्ग है, ये शीतलाचार मार्ग है, ये जैन धर्म नहीं, ये जैन गुरु नहीं और जैन धर्म नहीं। और स्वयं सच्चे गुरु बन करके एक चर्या दिखाई दुनिया को, तो क्या उनको आहार नहीं मिला? अगर कोई उपदेश भी उस समय उपदेश भी नहीं दिया होता तो क्या आहार नहीं मिलता? सच्चे वेश को धारण करने के उपरांत और सच्चे आचरण में आने के उपरांत लोग ऑटोमेटिक भागने लगते हैं उनके पीछे, यही तो पुण्य है। आचार्य से जंगल में चातुर्मास कर लेते हैं, सारे भारतवर्ष के लोग दौड़ करके वहां चले जाते हैं, वो जहां पैर रखते हैं वहां जत्रा बन जाता है, स्वर्ग ही बन जाता है। उनके पास क्या है? कोई संकेत नहीं देते, कोई कुछ भी नहीं। वो चातुर्मास कल के दिन कहां करेंगे ये भरोसा नहीं रहता, कल के दिन कहां होगा, यहां स्थापना होगी कि बाजू के उसमें क्षेत्र पर स्थापना होगी, कोई भरोसा नहीं रहता। लोग तरसते रहते हैं, हमारे यहां आ जाए, हमारे यहां आ जाए, हमारे यहां आ जाए, हमारे यहां आ जाए। किसी को पूर्व संकेत नहीं मिलता, आकस्मिक रूप से पहुंच जाते हैं। प्रकृति सब जगह बुलाती है उनको, सभी लोग सब जगह बुला रहे हैं, जाएंगे कहां? और फलानी नई जगह नहीं गए और उस जगह गए तो क्या नाराज होते? प्रकृति किसी पर नाराज नहीं होती और नाराज होने वाली प्रकृति नहीं कहलाती। क्यों? जो नाराज होते हैं उनकी प्रकृति बिगड़ती है कि नहीं? उनकी प्रकृति बिगड़ती है कि नहीं? तो प्रकृति बिगड़ गए तो प्रकृति कैसे हो? वो तो विकृति है। तो नाराज भी नहीं होते। वो कहते हैं जहां वो गए वहां के लोगों की प्रशंसा कर, धन्य है आपका भाग्य, आपको लॉटरी खुल गया, हम तो वंचित रह गए, हम तो दौड़ दौड़ करके यहीं आएंगे, यहीं लाभ लेंगे। सारे लोग वहां जाते हैं, लाभ लेने लगते हैं। ये है सत्य गुरुओं की महिमा। न जादू टोना, न मंत्र तंत्र, कुछ भी नहीं। ऐसे गुरु भी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और उसके पीछे भी लोग दौड़ रहे हैं, जो मंत्र तंत्र नहीं देते, मुख उठा करके देखते तक नहीं, न साहूकार न गरीब, कौन आए कौन गए पता भी नहीं रहता। वो अपने लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाने में लीन रहते हैं। इतनी वीतरागता, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, कौन गए कौन आए, आशीर्वाद भी नहीं देते, ये सब कुछ नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? ये विकृति पूछती है। विकृति सामने खड़े होकर विकृति पूछती है, प्रकृति नहीं पूछती। प्रकृति कहती है, प्रकृति के विचार अलग रहते हैं और विकृति के विचार अलग रहते हैं। विकृति ये कहती है कि आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, हम फुकट आए थे क्या आपके पास? दो हजार किलोमीटर से आए, अगली बार नहीं आएंगे। हाँ, इतना खर्च करके आया, दृष्टि भी नहीं आया, देखा तक नहीं और अपने आप में मगन। ये तो बाद में करो ना, जरा पहले ऐसा तो करो जरा। 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं, जरा महाराज देखो, हम लोगों को देखो। तो उपदेश में क्या कहते हैं वो, बैठ जाओ, मेरे देखने से ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता, तुमने मुझे देखा तुम्हारा कल्याण हो गया है, जाओ। मेरे द्वारा तुमको देखने से या तुमको ऐसा करने से कल्याण तुम्हारा होना संभव नहीं। तुम देखने के लिए जो आए थे, कल्याण तो हर क्षण हो रहा था, अब देख लिया, सफलता मिल गई, जाओ, कल्याण हो गया। ये सच्चे गुरु का उपदेश, ये सच्चे गुरु का उपदेश ऐसा होता है। और अगर आचार्य श्री लिखते लिखते किसी को और देखा तो इतना खुश हो जाता है वो कि मेरे वो कभी नहीं देखते और मेरे ओर देखा, वो जैसे लॉटरी खुल गया हो। बैठते बिल्कुल, एक बार की बात है, एक लड़का गया यहीं से, पहली बार गया, चातुर्मास मेरा वहीं था। उसने जाकर के कहा, महाराज हम महाराज के पास आए हैं और आपके आशीर्वाद लेने, दर्शन करने के लिए आए हैं। तुमने का आशीर्वाद भी दे दिया। प्रवचन का टाइम हो रहा था, जब उठने लगे आचार्य जी, ठहरो 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 ठहरो, बच्चा था वो, ठहरो हम फोटो लेने वाले, आपका फोटो लेने वाले। तो आचार्य से उठ गए थे, बैठ गए वो, उठे थे, बैठ गए और फोटो खींचा उसने, फोटो आ गया। फिर उठ के जाने लगे और देखा तो उसमें फोटो ही नहीं आया है। अजर से फोटो ही नहीं आया है, अजर इसमें फोटो नहीं आया, कहा तो आचर से वापस आकर के बैठ गए। वापस आके बैठ गए, मुस्कुराने लगे, फोटो निकाला उन्होंने। जब फोटो आया, अब आया कि नहीं आया, अब मैं जाऊं? भाग्यवान व्यक्ति हो तो गुरु किस तरह से कृपा करते हैं भव्य जीवों पर, इसका कोई भरोसा नहीं रहता, नहीं रहता। और जो तरसते हैं उन पर बरसे ये नियम नहीं है। जो तरसते हैं उनसे, बार बार तरसते हैं उनसे बरसे ये नियम नहीं, क्योंकि उनका तरसना उनके पुण्य पर होता है और इनका बरसना इनके पुण्य पर होता है। इनकी कृपा उन पर होने के लिए उसका पुण्य चाहिए। अब देखो, कभी ऐसी घटना नहीं घटी, उठ करके चले गए और वापस जा करके बैठ गए, और प्रवचन के लिए जा रहे हैं और वापस आकर के बैठ गए। क्या पुण्य होगा वो? गुरु जैसे, गुरु प्रकृति है, गुरु प्रकृति है, वो प्रकृति पुण्य का बल हो, वहां कृपा ही कृपा है। पुण्य का बल हो वहां कृपा ही कृपा है, और पुण्य ना हो तो जिंदगी भर तरसते रहो, गुरु की कृपा होती नहीं। ये गुरु को दोष देने का नहीं होता। विकृति कहती है हम तो हजार बार जाते हैं, एक बार भी आशीर्वाद नहीं मिलता। इसी में तुम्हारी परीक्षा है, इसी में इनकी परीक्षा होती है। तुम चाहते यही गलत है। जिसके पीछे पड़े हैं उसमें सहजता नहीं है, तुम चाहते ही, चाहना ही गलत है। तुम आकुलित व्याकुलित हैं, तुम तत्व को समझे नहीं अभी। ऐसा करने पर ही मैं सफल होता हूं, ये धारणा है। इस धारणा को तोड़ते हैं गुरु, इस धारणा को तोड़ते हैं पहले। ऐसे किए बिना भी तुमको कृपा हो जाती है ये कल्पना आना चाहिए, और ये कल्पना आने के बाद ही उसकी महिमा बढ़ती है, उसका स्वाद भी तभी मिलता है। नहीं तो इसी में रहे कि ऐसा करने पर फल मिलता है और ऐसा नहीं करने पर फल नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा जितनी जुड़ी रहती है उस पर निर्धारित करता है। गुरु के प्रति वापस प्रतिफल की अपेक्षा, ये अज्ञानता है। समय बहुत हो गया।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरुमा अब तक हम विषयांद रहे। अब ना हूँ।